सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। क्योंकि सारे कल्प के अंदर ये जो संगम योग है तो बहुत छोटा पर इसका रोल बहुत बड़ा है। ऐसे तो सतयुग बीतेगा त्रेता आएगा फिर भी संगम आएगा, त्रेता के बाद द्वापर युग आएगा उसके बीच का भी संगम आएगा, और द्वापर के बाद फिर कलयुग आएगा उसके बीच का भी संगम आएगा। लेकिन ये जो संगम है बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए हमेशा बाबा पूछते थे कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है, बीज बड़ा है या वृक्ष बड़ा है। तो बीज को ही कहेंगे ना, भले छोटा होता है, यदि बीज ही ना हो तो वृक्ष इतना कहां से आएगा। तो पावरफुल बीज है, पुरुषार्थ ना करें तो प्रारब्ध कहां से होगी। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध, फिर 84 जन्मों की जो उसके आधार पर प्रारब्ध है वो सब संगम युग का आधार है। क्योंकि संगम युग पर ही हमको बाप मिलते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते। अभी मास चल रहा है ना, तो कहते हैं कि जो पूरे 3 साल में पुण्य नहीं जमा होता वो पुरुषोत्तम मास में हो जाता है। तो जो सारे कल्प में नहीं होता वो संगम युग पर हो जाता है। तो ये बलिहारी संगम युग की है, क्योंकि बाप आते हैं अपने बच्चों को ढूंढते हैं। तो कल जैसा कि मैं सुना रही थी, अभी एक गीत भी बहुत सुंदर प्रैक्टिकल जीवन से ही बज रहा था, सबने योग में सुना कि बाबा का जब प्यार मिलता है तो किस्मत बदल जाती है। हम बाबा का एहसान नहीं चुका सकते। आप लोग अनुभव से क्या कहेंगे, बाबा का एहसान चुका सकते हैं? चुका सकते हैं? कभी नहीं। चाहे कितने भी जन्म ले लें, कितने भी कल्प बीत जाए, हम बाबा का एहसान नहीं चुका सकते। क्योंकि बाबा जब हम बच्चों को मिलते हैं तो सारी अनुभूति करा देते हैं कि बाबा सुख का सागर कैसे है। भले भक्ति में हम कहते थे दुख हरता सुख करता, पर सुख का सागर कैसे है। ये बाबा जब आते हैं तो बच्चों को अनुभव कराते हैं। उसी में से एक अनुभव बताएं आपको। यही गर्मी का दिन था और मधुबन का जितना आपने शायद अंदर नहीं देखा है रूम है, और जहां ईशु दादी का ऑफिस है उसके पीछे क्लासरूम, बाबा बैठ के मम्मा मुरली चलाते थे, अंदर रहने का था। तो गर्मी लग रही थी, उस जमाने में पंखा वगैरह का नहीं था कि यहां पंखा हो। तो रात्रि को कुछ मच्छर लग रहे थे, कुछ गर्मी लग रही थी। तो हम बाहर निकल आए, तब ये ऑफिस नहीं बना हुआ था सामने का, तो यही जैसे नहीं अंदर घुटन हो रही थी तो चक्कर लगा रहे थे। अचानक रात्रि में बाबा निकल आए अपने रूम से बाहर, तो मुझे बहुत अंदर डर लगा, इतना डर लगा कि बाबा कहेंगे रात को यहाँ क्यों चक्कर लगा रही, इस बात का अंदर बहुत डर लगा। लेकिन बाबा ने इतने हल्के रूप में पूछा, बच्ची यहाँ कैसे? तो जवाब तो देना ही था, तो कारण बताया, बाबा मच्छर लग रहे थे, गर्मी लग रही थी। अच्छा बच्ची, तुम्हें मच्छर लग रहे थे, गर्मी लग रही, अभी तुम्हारा इंतजाम बाबा करता है। आप सोचो जो हम अंदर डर रहे थे और आवाज बहुत धीरे निकली डर के मारे, एकदम खुशी का पारा चढ़ गया। बाबा कहते ये मेरी चाकड़ी है ना, चट्टी पहनते थे खड़ा हूं, ये चाकड़ी अंदर रख के और मेरा चप्पल उठा के लाओ। मैं फटाफट कमरे में रख के और चप्पल उठा लाई, फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया। तो जहां टेलीफोन एक्सचेंज है इधर उधर सब जगह, तब कच्ची जमीन थी, चक्कर लगाया। तो बाबा ने कहा बच्ची सबसे सेफ जगह तो यही है बाबा के कमरे के बाहर, तो जहां मुरली का स्टैंड रखा हुआ उधर में देखो, सुबह इंतजाम कर देंगे, आज रात को जाओ सो जाओ, सवेरे आपका इंतजाम हो जाएगा। मैं भी नहीं सोच पाई क्या इंतजाम हो जाएगा, फिर तुम बड़े सुख से सोना, सुख का सागर बाप। सवेरे ये हिस्ट्री हॉल बन रहा था, खिड़कियों के लिए कारपेंटर काम कर रहे थे, खिड़कियां बननी थी, तीन तीन फुट ये सब दीवारें उठ चुकी थी। तो बाबा ने एक रवि दत्त भाई थे जो इसको बनवा रहे थे, चंद्रराज दादा सारी प्लानिंग करते थे, वो सारा काम देख रहे थे लेबर्स के ऊपर। उनको बुलाया कर रवि दत्त इधर आओ क्लास में, देखो मेरी बच्ची को गर्मी लगी रात को, मच्छर ने काटा, अभी तुम एक काम करो, ये सारे कारपेंटरों का काम बंद करा के खटिया बनवाओ। तो खाट बनवाई, खिड़की दरवाजे बनना बंद हो गए, खाट बनवाओ और वो टेंट निकालो और इसको यहाँ उसका सब ठीक करो, अभी पहले टेंट लगवा दो, नाश्ता भी बाद में करना। लोके बड़ी शहजादी आई है, बाबा ने इतनी जल्दी कर दिया, बोलने को तो कुछ भी कोई बोले। शाम तक खाट भी तैयार हो गई, टेंट भी तैयार हो गया और शाम को लग भी गया। खुले छत में नहीं सोना है, टेंट लगा के। फिर बाबा निकल के आए, कहा देखो बच्ची हवा बहुत तेज है, तुम यहाँ सो, डरना बिल्कुल नहीं, सामने बाबा है, अगर तुम्हें डर लगे तो। बाबा ने एक्शन करके दिखाया, बड़े जोर से कहना बाबा मैं फट से आ जाऊंगा, तुम निर्संकल्प होके सो जाओ, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा तुम्हें मिलेगी, और समझो बाबा आमने सामने है, तुम डरना नहीं, यहाँ सो। तो जैसे कहा ना एहसान तुम्हारा बाबा, तो रात भर नींद ही नहीं आई, सोए क्या, लगे ऐसा भी कोई मिलेगा दुनिया में। दो घंटे में खाट बन गई, टेंट तैयार हो गया, लग भी गया, सब काम रोक के, फिर अंदर अंदर लगता था कि बाबा सुख का सागर है ना, ये प्रैक्टिकल सुख है कि मेरे बच्चों को जरा सा भी। आज कोई लौकिक माँ बाप को कहो मुझे गर्मी लग रही थी और मच्छर काट रहे थे, तो तैयार कर देंगे, चाहे करोड़पति बाप क्यों ना हो, इतनी जल्दी फटाफट करा देंगे? नहीं। तो जैसे कि लगा कि बाबा सुख का सागर परम धाम में नहीं है, यहाँ है। बच्चों को मच्छर काटने जितना भी दुख बाबा को सहन नहीं होता था, जो सुख का सागर है। फिर वो प्यार का सागर कैसे है? प्यार तो बाबा सबको करते हैं, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि बाबा मुझे कम प्यार करते हैं। हर एक की अनुभूति क्या है, सबसे ज्यादा मुझे बाबा प्यार करते। जैसे वो दिखाते ना कि एक श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, तो भविष्य होवन हार श्री कृष्ण, वो जैसे कि बाबा हर आत्मा को बहुत प्यार करते, पर उसका सबूत क्या है? उसी टाइम पर आपको बताएं कि बॉम्बे से किसी ने आम की छोटी पेटी भेजी थी, सेंटर्स भी कम थे, इतना फैशन भी नहीं था, इतनी पैदाइश भी आमों की नहीं थी, छोटी सी पेटी आई थी। तो बाबा ने मुझे इशारे से बुलाया, बिल्कुल जैसे अकेले में कोई इधर ना देखे, दाएं ना बाएं ना आमने ना आगे ना पीछे, जल्दी आओ बच्ची, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ जल्दी। मैं गई रूम में, एक आम निकाल के और ऐसे छिपा के दोनों मुट्ठी में पकड़ा दिया, कहा बच्ची कोई देखने ना पाए, ले जाओ आम। और पीछे जो जहां डीजल है ये सब है, इधर झाड़ियां थी, खा के और झाड़ी में छिलका फेंक देना इतना दूर जो कोई छिलका भी ना देख पाए, चुपचाप में खाना, छिपा के खाना। तो ले तो लिया, खा लिया। मैं आम नहीं खाती, मैं फल नहीं खाती, पर इतने प्यार से जो दे दिया तो मैं यही भूल गई कि मुझे आम नहीं खाना है। और मैं भी कहा कि चोरी चोरी खा के जल्दी जल्दी और फेंक के आई, बहुत दूर फेंक के आई कि वहां तक कोई पहुंचे नहीं कि छिलका है भी। कारण है कुछ एलर्जी है, लेकिन उस समय मैं भूल ही गई। तो आप सोचो कि प्यार का सागर है, अब ये प्यार क्या भूल सकता है? एक जन्म भूलेगा कि सतयुग के सातों जन्म भूलेंगे? नहीं, वो कल्प तक के लिए भर गया, नहीं भूलेगा। तो कहते हैं जन्म जन्म का, कल्प कल्प का प्यार एक जैसे नूंद हो गई, तो जैसे एक भर गया कि बाबा ने मुझे कितना प्यार किया। तो सुख का सागर भी है तो प्यार का सागर भी है। फिर बाबा ज्ञान का भी सागर है। तो एक दिन बाबा ने कहा बच्ची एक दिन तो तुम्हें सेवा में जाना ही है। मैंने कहा बाबा आपने जब मधुबन बुलाया तो यह सेवा दिया तो है आपने? कहा बस झाड़ू पोछा मेरे कमरे का कर देना, रोटी पकाना यह सेवा नहीं है बच्ची, अभी बेहद की सेवा करनी है, विश्व की करनी है। अब विश्व की क्या सेवा होती है, समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा उसको सीखो। अब कैसे सीखें? तो कहा नहीं, तो यहाँ पे एक छोटा सा वो टेंट लगा था, चारों तरफ बंद। अपनी दादी जी है ना, रतनमोहिनी दादी जी, एक सन्यासी आया करता था, उसको दादी जी कोर्स कराती थी। तो कहा कि देखो जगह छोटी है, एक कुर्सी पे वो बैठता, एक पे दादी बैठती, बीच में बैठेंगे तो उसका अटेंशन जाएगा, तुम उसके पीछे बैठ के सुनो कैसे सेवा होती, कैसे प्रश्न और उत्तर होते हैं। वो तो खैर बात दूसरी है कि वो सन्यासी को फिर बाबा ने कहा जाओ रोटी पकाओ, झाड़ू लगाओ, भाग गया। वो रहने के ख्याल से कहता तो मैं यहीं रह जाऊं, जब बाबा ने कहा जाओ ये काम करो भंडारे में, तो भाग गया, टिका ही नहीं। कभी कभी मुरली में एक आध बार सुना भी होगा। फिर और भी कैसे गहरा कोर्स कराया जाए, तो जगदीश भाई से कहा इसको ज्ञान सुनाओ, ज्ञानी तू आत्मा बने। फिर बाबा को सेवा पे भेजना है, सेवा लेनी है, तो कहना शुरू कर दिया एक दिन सेवा पे जाना है। तो हमने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे। कहा तुमको पता है घर में कौन बैठता है? घर में कौन बैठता है? कमाऊ पूत कभी घर में नहीं बैठता, बैठेगा वो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें सेवा करेंगी तो मेवा मिलेगा, तो ज्ञानी तू आत्मा बनना है। तो बाबा ने अपने भाषा में कहा कि बच्ची यहां जो रहे पड़े उनको मत देखो, अगर यहां रहेंगी तो तुम्हारी गिनती किस में आएगी मालूम है? पच्छर माल में। पच्छर माल समझते हैं ना सिंधी भाषा में, जैसे जो छटा हुआ माल होता ना, रिजेक्टेड, जिसको कोई स्वीकार ना करे। भाई कपड़ा भी रिजेक्ट है, ये सब्जी भी रिजेक्ट है, फल भी रिजेक्ट है। तो इस तरह से बाबा ने कहा नहीं बच्ची यहां तुमको पच्छर माल बनना है क्या, सेवा पे जाना होगा। कब जाना होगा वो बाबा बताएगा, अभी नहीं, अभी तो तुम तैयार हो जाओ। तो माना बाबा ने धीरे धीरे बुद्धि देखो कहां निकाली, पहले रूम की सफाई करो, फिर रोटी पकाओ, फिर चूल्हा में पोथा लगाओ, फिर ये भी काम करो, फिर पढ़ाई में बुद्धि लगाओ। लेकिन ये पढ़ाई की धारणा बाबा ने कहा तब होगी जब योग होगा। तो अमृत पेले का महत्व तो पहले भी था, क्योंकि हमारे जो लौकिक पिताजी थे वो सबको 4 बजे जगा देते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी। कहते थे जो अमृत पेले उठेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और सुबह जब पढ़ेंगे तो मेमोरी में फीड होगा। तो उठने की आदत तो थी, लेकिन और जल्दी उठ करके योग लगाना है वो फिर बाबा ने पक्का। बाबा ने कहा बच्चे यहां कोई डर नहीं है, चाहे इधर बैठो उधर बैठो किधर भी बैठो, और एकांत में बैठ के मनन चिंतन करो और धारणा। अब छोटी उम्र थी, इतनी जल्दी नींद भी नहीं खुलती थी, सो जाते थे, दिन में नहीं सोते थे, क्योंकि दिन में दिमाग में बैठ गया कि मुझे जो कोर्स मिल रहा है दादी रतन मोहिनी के द्वारा और जगदीश भाई जो दिल्ली के संजय उनके द्वारा, तो उसको बैठ के मैं लिखती थी रिवाइज करती थी, तो दोपहर को नहीं सोती थी। तो इस तरह से सवेरे फिर दादा भी शरतन को मैंने कह दिया कि हमको जगा दिया करना। तो दादा क्या करते थे, कैसे जगाएंगे एक कन्या को भाई जगाने जाए, पर दादा पानी गर्म करने के लिए उठते थे 3 बजे, लकड़े से सबसे पानी गर्म होता था, वो सबको बाल्टी बाल्टी मिलता था। तो वो क्या करते थे, टार्च दूर से आंखों में टार्च मारते थे, मैं उठ जाती थी। तो फिर उठ के अपना अमृत वेले का अभ्यास करते थे। तो इस तरह बाबा प्यार का भी सागर है और सुख का भी सागर है और ज्ञान का भी सागर है। फिर वो मेरा सतगुरु कैसे है, तो उस समय अमृतसर से 2 भाइयों ने साड़ी का बिजनेस किया था, और जो बांदेलियां थी, बांदेलियां बहुत छिप छिप के बाबा से मिलने आ जाती थी कोई न कोई रिश्ते के बहाने, उनको कोई गिफ्ट आइटम क्या देंगे, और आज की तरह कोई गिफ्ट आइटम भी नहीं होता था, तो बाबा को देना भी है बांदेली को रंगीन साड़ी देते थे, कलर्ड प्रिंटेड, ताकि वो ले जाए तो घर वाले पहचान भी ना पाए कि ये माउंट आबू से आई है या कुछ वहां की निशानी है, तो बाबा की याद भी मिल जाए सौगात भी मिल जाए। तो जब वो रंगीन कपड़ों की गठरी आई तो बाबा ने मुझे बुलाया। कहता ना गुरु लोग पहले अपने शिष्य का पेपर लेते थे, ठीक ठाक है ठोंक बजा के। इतना प्रलोभन बाबा ने दिया, इतना दिया कि शायद फिसलने की मार्जिन थी। बहुत समझाया, तुम तो घर में हो, तुम तो बाबा के पास हो, कोई तुम सेवा केंद्र पे थोड़ी हो, ये साड़ी अच्छी है पहन लो, ये पहन लोगो। पता नहीं उस समय दिमाग में क्या हो गया था कि एक बार तो था कि बाबा की बात को नहीं टालना है, पर ना 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 निकलता चला गया, नहीं बाबा ये भी नहीं चाहिए, बाबा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो खैर बाबा भी अंदर से पेपर ही ले रहे थे, तो उस पेपर में मैं पास हो गई। लेकिन संतरी दादी ने लास्ट में कहा कि तुम हर बार किसको ना बोल रही हो। फिर बाबा ने एक महावाक्य बोला, एक साड़ी उठाई व्हाइट थी और उसका पट्टा बॉर्डर बना हुआ था, तो बाबा ने कहा ये तुमको सतगुरु दे रहा है, ये सतगुरु का पखर तुम नहीं लेंगी क्या, पखर मना वस्त्र। तो मेरे मुंह से निकला नहीं। इस पर संतरी दादी ने कहा कि तुमको पता है ये बाबा क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है सतगुरु दे रहा है, सतगुरु का पखर है, तुम सतगुरु का आशीर्वाद नहीं लेंगी, ये तुम्हें ले लेना है, बाबा दे रहा है। अब ले लिया, अब सतगुरु के भावना से ले लिया कि सतगुरु हमको तेरा, लेकिन अब उसको करें क्या। तो फिर दूसरे दिन बाबा ने बुलाया, बच्ची तुम जब सेवा में जाएंगी वो तो पहनेंगी नहीं वहां, ये तो घर है। अच्छा तुम, मैंने कहा क्या करें, क्लास में भी तो नहीं पहन सकते पट्टे वाली साड़ी। कहा जब तुम चूल्हा पोतने जाती हो ना उस समय पहनो। तो बाबा ने कब पहनना है वो भी जगह बता दिया, ठीक है। मट्टी में जब पोतने जाते थे, पर उसका बॉर्डर बहुत सिलिक वाला बहुत सुंदर था, चमकता था, तो अब उसमें उसकी ये भी लालच लगती थी कि बॉर्डर ना खराब हो। तो माना काम करते सफाई से काम करें, ये बहुत ध्यान रहा कि कपड़े न खराब हो, क्योंकि बॉर्डर न खराब हो जाए उसका। तो ये भी सीख मिल गई कि हम काम भी कर लें। मेरे से आप सारा दिन किचन का काम करा लो, एक हल्दी की दाग मेरी साड़ी में नहीं पड़ेगी, मुझे क्लास कराने के लिए साड़ी बदलनी नहीं पड़ेगी। मैं कोई अपनी महिमा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाबा ने जैसे वो साड़ी दे करके ये सिखा दिया कि ये गंदी ना हो, खराब ना हो। तो मुझे बाबा पे तो निश्चय पूरा, और मुझे ड्रामा पे बहुत पक्का निश्चय था कि जो आज होगा वो हूबहू कल्प के बाद भी होगा। तो जैसे कि हमारे में कोई भी आदत जो बचपन की नहीं थी वो मैंने जीवन में नहीं डाली, जैसे चाय पीना, कॉफी पीना, नए नए पेय पदार्थ निकले हुए हैं, क्योंकि ये हमारे सब बचपन में नहीं थे। आज तक मैंने चाय नहीं पी है, लेकिन ड्रामा में नूंद है। तो एक दिन सर्दी बहुत थी, बाबा टेबल पर चढ़ के, और अल्मोनियम की केटली होती थी, आओ बच्चे सबको चाय लाइन से। तो मेरे मन में आया कि बाबा चाय पिला रहा, एक बार तो कल्प में पी लेते हैं। तो हम भी आ गए, मतलब बाबा पिला रहा ना इसलिए, तो ये मेरा कल्प कल्प का होगा और मैं भगवान के हाथ से चाय लेके पीऊंगी। तो मैंने वो ही चाय पी है, बाकी मैंने अपनी लाइफ में चाय नहीं पी है। तो इतना था कि जो ड्रामा में नूंद है उसको पूरा कर लेंगे तो हमारा कल्प कल्प चलेगा, और अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। फिर एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची मम्मा बाबा का भोग बना के फिर मुरली चलाती थी, भोली दादी तैयारी करती थी और मम्मा गुरुवार का भोग बना के फिर आके मुरली चलाती। तो बाबा ने कहा, देखो मम्मा मातेश्वरी किचन में जाके भोग बनाती है, तो बच्ची तुम एक काम करना, अपने जीवन में कभी माताओं से भोग नहीं बनवाना, सुना? और कल्प में एक बार भगवान माना बाबा आता है, भक्ति मार्ग में तो बाबा ने खाया ही नहीं, और जब आया है तो ये सोच के बनाना कि मुझे अपने हाथ से बना के बाबा को खिलाना है, और ये कल्प में एक ही बार मौका मिलेगा। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने कभी माताओं से भोग नहीं बनवाया है। हमारे सेंटरों में बहनें माताओं को लगा देंगी, भोग बना लो, मैंने नहीं बनवाया, क्योंकि ये मुझे बाबा ने बुद्धि में कीमत बिठा दी, कदर बिठा दी कि हम किसके लिए बना रहे हैं। अगर कोई रिश्तेदार लंदन से आ जाए, 5 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, तो क्या दूसरों से, नौकरों से या किसी और को बुला के खाना बनवाएंगे उसके लिए? खुद किचन में खड़े जाएंगे, मेरा फलाना रिश्तेदार आया, मेरा भाई आया, मेरा फलाना आया, ये मेरा कौन आया है? बाबा ने कहा ये हमेशा दिमाग में रखना। तो तुमको कभी भी यह संकल्प नहीं आएगा लाइफ में कि हम टीचर बने हैं, हीनता नहीं महसूस होगी कि हम क्या भंडारी है जो खाना पका रहे हैं। और कभी ये तुम्हें गर्व नहीं होगा, कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम तो टीचर बन गए इसलिए अब भंडारे का काम दूसरा कोई करे। तो ये जैसे बाबा ने उस समय बुद्धि में बिठा दिया और ये बुद्धि में बैठ गया। तो ऐसे कई बातें हैं जो बाबा की सीखने को मिली। फिर उसके बाद में सामने का ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, जब पार्टियां आती थी तो नीचे का ही था, तो बाबा रोज रात को एक वो लेते थे फ्राई पैन जैसा लोहे का, उसमें आग कोयला जला हुआ होता था और उसमें हवन वाली सामग्री होती थी, चंदन का बुरादा वगैरह सब। तो बाबा कहते थे चलो बच्ची सबके कमरे में धूप दीप करके आते हैं, तो जो वाइब्रेशन है वो शुद्ध हो जाएगा, तो जो शुद्ध वाइब्रेशन में सोएंगे तो उनका योग भी अच्छा लगेगा, मक्खी मच्छर भी खत्म होंगे। तो रोज का नियम था कि मैं बाबा के साथ वो आग का लेके और जाती थी, बाबा साथ जाते थे, चुटकी चुटकी उसमें डालो तो धुआं उठता था, पूरे में उसको कमरे में घुमाओ। तो आए हुए कई तो सोए हुए होते थे, तब ये खाटवाट का प्रबंध नहीं था, फर्श बिछा होता था और जो बैग अटैची होती थी वो सबके सिर के किनारे और उसी में सोने का प्रबंध, सबके अटैचियां सिर की तरफ होती थी। तो उस समय बाबा ये शिक्षा देता था कि देखो बच्ची, ये जो सोए पड़े हैं ना, इसमें तीन प्रकार की निद्रा वाले हैं। एक तो नींद कर रहे हैं, योग निद्रा में है, माना सतोगुणी नींद कर रहे हैं, और दूसरे रजोगुणी नींद कर रहे हैं, और तीसरे तमोगुणी। तो तीनों की निशानी बाबा खड़े होकर बताते थे, इसका सतोगुणी नींद है, इसका रजोगुणी नींद है, इसका तमोगुणी। जो उल्टे सीधे पड़े होते थे ना, जैसे पानी में तैर रहे हैं, हाथ कहाँ है, गर्दन कहाँ है, पैर कहाँ, बाबा कहते हैं तमोगुणी नींद में है। तो अब जिससे कि एक वाइब्रेशन आता था पवित्रता का, शांति का, निर्मलता का, जैसे छोटा बच्चा सोता है ना तो उसका चेहरा देखो तो एक पवित्र वाइब्रेशन आता, बाबा कहते ये योग में सो रहा है। तो बाबा बताते मुझे थे, लेकिन मुझे लगता था कहीं मैं रजोगुणी तमोगुणी नींद में न सो जाऊं। फिर जो सोए हुए होते थे ना, तो उनके जो चरण होते थे, पांव तलवे दिखाई देते थे, तो बाबा कहे देखो बच्ची, इनके पांव कितने गंदे हैं, और पांव का दिमाग से कनेक्शन है, और चरण की महिमा कितनी है। बाबा ज्ञान का सागर उतने ज्ञान भी दे देता था, कहेंगे आप मेरे घर में चरण घुमाना, आपके चरणों की धूल मुझे मिल जाए, बना चरण की कितनी वो है, चरण स्पर्श करते हैं, और देवताओं के लिए कहते इन चरण कमल, तो लक्ष्मी के चरण कमल के ऊपर दिखाते हैं, आसन पे दिखाते हैं। तो जब हमारे चरण ही कमल जैसे पवित्र नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तो इससे सोचो कि दिल और दिमाग कितना शुद्ध होगा। तो पैर को धो के साफ करके बाबा से, तो बाबा बता उनके लिए रहे हैं, और वो मुझे लगता था कि मेरे पांव साफ होंगे, मैं बाद में अपने पैर देखने जाती थी, फिर बैठ के पत्थर लेके रगड़ती थी साफ हो जाए और साफ हो, कहीं बाबा मेरे पैर ना देख ले। तो माना इससे जैसे एक छोटी छोटी बातों से एक सीख मिलती रहती थी और सीखते रहते थे। तो जब मम्मा बॉम्बे में थी, इधर की तरफ कपड़े सुखाए जाते थे, तब चिमटी वगैरह का फैशन नहीं था, कपड़े किसी के गिरे हों और अगर उधर से निकल जाए तो बाबा बुलाते थे, बच्ची मना जा रहे हैं और कपड़ा है मेरा नहीं है, बाबा ने कहा मेरा तेरा क्या होता है, ये है तो यज्ञ का वस्त्र ना, किसी का भी है, तुम्हारा है, उसका है, किसका है। तो ये यज्ञ का समझ करके इसको उठाओ और इसको ठिकाने पर रखो। तो जैसे एक दिमाग में बैठ गया कि भाई यज्ञ का है, हर चीज को संभालना है, ये फलानी बहन का है, नहीं, फलानी बहन को ये जो सामान मिला वो भी तो यज्ञ से मिला ना, तो बहन का नहीं संभाल रहे हैं, यज्ञ का समझ करके संभाल रहे हैं, यज्ञ के रक्षक है। तो एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जैसे जीवन में जो कभी ना सुनी थी ना किया था, वो जीवन में आती गई आती गई, और जैसे बाबा सब कुछ सिखाते गए। तो इसी प्रकार से हम लोग तो गांव के रहने वाले, पालक है, धनिया है, कितना तो टोकरा गाय को चला जाता है, खेतों से आया और चला गया। यहाँ पे वो जवाहर दादी थी, तो मोटा मोटा निकाल लिया, तो उन्होंने पता क्या किया, उसके बीज का निकाल निकाल के इतना कटोरी में ले आई, कहा देखो तुमने इतना नुकसान किया ना, इतना नुकसान किया, ये एक व्यक्ति के लिए साग है, ये यज्ञ का नुकसान है। अरे मेरा तो दिमाग ही खुल गया कि इतना तो गाय खा लेती, टोकरा उठा के डाल दिया जाता है, ये यज्ञ का नुकसान है। तो ऐसे करते करते कि कोई भी चीज यज्ञ की बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हमें यज्ञ को कैसे बचाना है और एक एक चीज को बचाना है, क्योंकि जिसने दिया उसने तो अपना भाग्य बना लिया, और हम उसको खराब करके, क्योंकि हम गांव में नहीं बैठे हैं, खेती में नहीं बैठे हैं, हम यज्ञ में बैठे हैं, उसकी हमें संभाल करनी। ऐसे छोटी छोटी बातें बाबा सिखाते 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 बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। फिर जैसे कि मैं बाबा के रूम में होती थी तो तीनों समय वो भाग्य मिला कि बाबा जो कुछ भी नाश्ता करते थे या दोपहर का भोजन या रात्रि का, तो जैसे कहते हैं ना वो गऊ का अग्रासन निकालते हैं ना, इतना टुकड़ा थाली का, तो सबसे पहले जो गऊ पाल, इतनी कुमारियों को पालने वाला गोपाल कहो गऊ पाल कहो, तो बाबा उसमें से पहला गस्सा पहली गिट्टी मुझे खिला देता था। तो ये तीनों टाइम भगवान के हाथ से भोजन खाने का भाग्य हमको यहाँ बराबर मिलता रहा, और हम भी इंतजार करते थे कि जब बाबा नाश्ता करेंगे अभी पहले खिलाएंगे, तो बाबा खिला देते थे। तो ऐसे करते करते बाबा से सीखते सीखते फिर मम्मा ने बहुत सारी बातें सिखाई, और मम्मा ने व्यवहारिक बातें बहुत सिखाई। जब मेरे जाने का टाइम आया, पूछ रहे थे ना कैसे जाना हुआ, तो जब मैं यहां से निकलने लगी तो बताया था ना कि उसी टाइम बड़ी टेप, वो टेप जाती थी पार्सल करके, वो सुनाई जाती थी, तो जो बाबा महिमा करते थे, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को इतनी महिमा करते हैं कि ना उमंग हो तो उमंग आ जाए, ना शक्ति हो तो शक्ति भर जाए, और ना योग्य हो तो योग्य बन जाए। तो वो जो बाबा महिमा करते थे ना, तो वो सुन सुन करके फिर डिमांड आने लगी, बाबा हैंड चाहिए, बाबा हैंड चाहिए, मुझे चाहिए। तो गंगे दादी की जो मांग थी वो ज्यादा थी। यज्ञ की शुरू की जब बाबा ने स्थापना किया था ना, तो सात दादियां शुरू की थी, पर वो यूपी में कानपुर में थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुमको अभी जाने का बताया था ना कि अपने मर्जी से नहीं बोलना, दादा विश्वरतन ने सिखा दिया था कि कभी ना कहना हम फलानी जगह जाएंगे जहां मम्मा भेजे। तो जैसे किसी बेटी को ससुराल भेजते ना, तो बहुत सिखा के ऐसे रहना, आज्ञाकारी रहना, हाँ जी का पाठ पढ़ना, सबकी सेवा करना, सेवा करके दिल जीतना। मम्मा ने मुझे भी ऐसे ही बैठ के रात्रि को खूब समझाया कि कल परसों तुम्हें जाना है। तो मम्मा रोज शाम को हमें कोचिंग देती थी। तो लास्ट मम्मा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहा देखो तुम अभी नया नया सेंटर पर जा रही हो, तो कैसे तुमको सेंटर पर रहना है। ऐसे तो दादी बहुत अच्छी है, बताया गंगे दादी की इतनी महिमा कर दी थी मम्मा ने, इतनी भावना बिठा दी थी कि कुछ और दिमाग में आने का प्रश्न ही नहीं कि तुमको हम भेज कहां रहे हैं। तो पहले इतनी भावना बिठा दी थी, और उसके साथ मुझे कहा था कि देखो तुम अभी नई नई हो ना, तो छोटे से शुरू करना। समझो स्टूडेंट आते हैं, और जो अच्छे आएंगे उसको तो बड़ी बहन अटेंड करेगी, और तुमको शुरुआती में जो बिल्कुल साधारण होंगे ना, कोई बूढ़ी माता भी आ गई, कोई और आ गया, बिल्कुल साधारण आ गया, अनपढ़ आ गया, तो जब वो तुमको कहे इनको अटेंड करो, तो कभी मन में ये ना लाना कि बढ़िया बढ़िया जो आते हैं उसको तो वो समझा लेती और हमको ये देती है। नहीं, मम्मा ने कहा आत्मिक दृष्टि रख करके समझाना। हम गरीब को समझा रहे हैं, या हम बूढ़े को समझा रहे हैं, या हम अनपढ़े को समझा रहे हैं, या साधारण, नहीं, हम आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम उसकी बिरकुटी को देखना, और आत्मा समझ करके ज्ञान देंगी तो उसका बहुत कल्याण हो सकता है। जैसे बहुत सारी व्यवहारिक ज्ञान भी मम्मा ने दिया, जैसे बताया ना कि ना नहीं करना, हाँ जी करना, स्टेट नहीं कहना, हमको ये बात नहीं आती है कहना, तरीका बताओ, ऐसे इतनी व्यवहारिक बातें मम्मा ने हमको समझा करके और फिर भेजा। तो मधुबन से रोज जब यहाँ ग्रुप आता था तो बाबा उस समय ऐसे बिठाते थे और गीत बजता था बाबा के मिलन का, फिर बाबा दृष्टि देते थे, फिर एक एक बच्चे को बाबा टोली खिलाते थे और गोद देते थे। अब जो रहा पड़ा है उसको तो गोद मिलती नहीं। मेरा दिल करे मुझे भी तो बाबा हर बार गोद हमको भी ले लिया करें। अब जो पार्टी आई भले छोटी आती थी, 10 की 12 की 15 की, उस जमाने में यही बहुत बड़ा ग्रुप होता था। फिर हम युक्ति रचते थे, जैसे बाबा यहाँ मुरली चलाए या पहले छोटे में क्लास में होता था तो बाबा का जो पलंग है मैं उसके नीचे जाके छिप जाती थी, चादर पड़ी है उसके नीचे छिप जाती थी। और जब बाबा जाते थे और पैर को नीचे करके ऐसे लटका के चारपाई पे बैठ जाते थे तो मैं नीचे से पैर को छू लेती थी ऐसे, फिर अंदर छिप जाऊं तो बाबा के लच्छू देखो कौन है नीचे, जरा से छू ले जाते, नहीं कोई चुहिया लग गई कहीं और आ गया, तो मैं बिल्कुल दीवार से छुप जाऊं तो लच्छू ऐसे उठा के नहीं, तो कह रहे बाबा के नहीं बार बार लगता है। एक बार मैंने पैर पकड़ लिया तो कहा देखो अभी क्या है, आई कौन है, तो हाथ पकड़ के बाबा ने खींचा, कहा बच्ची तुझे क्या चाहिए, गोदी चाहिए? अरे तू पहले कह दे मुझे गोद में बैठना है, तू ये सब खेल क्यों कर रही है? तो फिर बाबा गोद में बिठा लिया। तो ऐसे मतलब जैसे कि आप सोचते हैं कि बाबा अब तो बड़ी चीज लगती है, उस समय ऐसे लगता था घर में जैसे खेल कर रहे हैं और बस यही है और बस बाबा है और इतना कुछ मिल रहा है, तो इतना इतना मना आनंद का सागर है बाबा, इतना आनंद आता था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, बस समझो आनंद का सागर है। चलो, और जैसे बड़ी दीदी थी, जब मम्मा बॉम्बे होती थी तो बड़ी दीदी मधुबन में बाबा के आगे रहती थी, तो उसी टाइम तो बड़ी दीदी थी तो मुझे ये हमेशा रहता था कि मैं बड़ों की सेवा करूं। तो कुछ नहीं मिलता था तो ऐसे तो दीदियां दादियां सेवा नहीं लेती थी, मैं दोपहर के टाइम भोजन के बाद दीदी के पास पहुंच जाती थी और रोज दीदी के सिर में तेल लगाती बिना नागा। ईशु दादी ने तो एक दो बार लगवाया है, नहीं बाकी नहीं, पर दीदी कहती थी अच्छा और लगाओ। फिर एक दिन दीदी ने बोला कि जो सबका सिर दर्द ठीक करता है, सिर दर्द मना दिमाग सबका, उसके सिर का दर्द तुम मालिश करके ठीक करती हो तो तेरा सिर दर्द हो तब? तो हमने कुछ बोला ही नहीं कि भाई हमारा कौन करेगा। तो दीदी ने कहा पता है तुझे कभी सिर दर्द नहीं होगा, आज 50 साल हुआ मुझे सिर दर्द का ज्ञान नहीं है, चाहे मेरे सिर पे ओले पड़े और चाहे धूप जून की धूप में निकल जाए और चाहे बारिश हो जाए चाहे ठंडी हो, आज तक मैंने कभी सिर पे मफलर नहीं बांधा है। हम छोटी छोटी बहनों को देखते मार लपेटे रहते, पर मुझे सिर दर्द नहीं हुआ है कि ये कहने को कि आज सिर में दर्द हो रहा। दीदी का जैसे सेवा का रिटर्न मिला और उनके वरदान लग गए कुछ भी हो लेकिन सिर दर्द नहीं हुआ। मुझे अज्ञानी नहीं सिर दर्द होता क्या है, भविष्य में क्या हो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आज की तारीख तक वो वरदान चल रहा। तो सेवाओं से दुआएं कितनी मिलती है जैसे हमको निश्चय। और बाबा ने कहा था बच्ची कभी भी कितने भी मेहमान आए तुम कभी ये ना सोचना इतने लोग आ गए हैं। जिसके घर में मेहमान नहीं आते वो घर निभागा होता है, और जो मेहमान आते हैं वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है। तो तुम बहुत प्यार से मेहमानों की सेवा करना, कभी थकना नहीं कभी उबना नहीं। तो जैसे ये सब बातें इंजेक्शन की तरह भर दिया बाबा ने। रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है वो बाबा ने सिखाया। जब बाबा मुरली चला के संदली से निकलते थे तो हम लोग पता क्या करते हैं, उठ के पीट दे के चले जाते हैं, नहीं बाबा कभी भी पीठ देके क्लास को नहीं गए, उल्टा चल के जाते थे। बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग जो भी दिया तो बाबा उल्टा चल के जाते थे, बाहर जाके फिर पीठ इधर को करते थे। कहते थे ये मेरे होवन हार देवताएं हैं। तो जैसे मंदिर को पीठ नहीं दिया जाता, ऐसे जो होनहार मेरे बच्चे देवता बनने जा रहे हैं उनको कैसे पीठ दे सकते हैं? ये विश्व के मालिक महाराजन बने इतनी ऊंची नजर से, और देखा जाए तो अपन कितने साधारण होते थे। तो जब बाबा इतना अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दे रहा तो वो जैसे दिमाग में आता था कि हमें भी सबको रिस्पेक्ट देना है, रिकॉर्ड देना है। तो एक एक कर्म बाबा से सीखते सीखते सीखते, फिर बाबा कहते जो कहने से करे उसको मनुष्य कहेंगे, जो इशारे से करे वो देवता, और जो कहने से भी ना करे तो उसका तो बाबा नाम ही नहीं बताते थे। समझ जाओ। तो कैसे आप सबने हिस्ट्री सुनी होगी कि बाबा खुद अनाज साफ करते थे, सब्जियां काटते थे। तो पता, अनाज साफ करने की जगह और सब्जी काटने की, जो अपने छोटा ये है ना जहाँ टोली की पैकिंग होती है, पैसेज में पार्सल पड़े, यही अनाज साफ होता था, यही सब्जी कटती थी, और जहाँ टोलियों के डब्बे रखे हैं इसी में सब सब्जियां रखी जाती थी। क्लास के बाद बाबा पहुंचे और अपन सब पहुंचते थे। तो ये रहता था कि हम सबसे पहले पहुंच जाएं। तो पहले वाले में बहुत रहते थे, आगे बैठने का बहुत और सबसे पहले चक्कू लेके सब्जी काटने में पहले, मसाला कूटना है तो उसमें भी पहले। तो जैसे एक होड़ थी, सब पहले 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 सब पहले करे। तो ऐसे करते करते जो कौ वो जिसको कहते हैं ना कि वो जो एक पत्थर की मूर्ति उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, पंडित जी करते हैं, तो जो सारे ब्राह्मणों का आदि देव, ब्राह्मणों का रचयिता, सबसे बड़ा पंडित तो वही है, कैसे एक पत्थर की मूर्ति में ये सारे फूंक फूंक करके मंत्र डाल डाल करके चैतन्य बना दिया, चलता फिरता बना दिया। तो ये शायद मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की रसम पड़ी वो संगम युग से पड़ी है। तो बाबा ने प्राण भर दिया फूंक फूंक करके और चलता फिरता एक चैतन्यता आ गई, चैतन्य बना दिया। बस ये छोटा सा अनुभव है। ओम शांति।